अब आगे आपने देखा कि रुद्र अपने कमरे में रूही की दी हुई मोती को देखकर मुस्कुराता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके दादाजी ने उसे नीचे बुलाया है। हॉल में रणवीर रुद्र को बताते हैं कि धनराज की पोती मेषा से उसकी शादी की बात चल रही है। रुद्र शादी से इनकार कर देता है। मेषा रुद्र को सबक सिखाने की सोचती है। पंडित जी बताते हैं कि दो दिन बाद शादी का शुभ मुहूर्त है। धीरज रुद्र और मेषा की सगाई कल करने की बात करता है। परी अर्जुन को रूही को प्रपोज करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ दिशा रूही को जल्दी तैयार होने के लिए कहती है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 30। अब आगे। रूही, तेरी आदत कब सुधरेगी? पता नहीं, जब तेरी शादी होगी तो तू कैसे मैनेज करेगी? दिशा की बात सुनकर रूही मुस्कुराते हुए बोली, दी, इसीलिए तो मुझे शादी ही नहीं करनी। मैं सारी जिंदगी यूं ही आपके साथ बिता दूंगी। इतना बोल वे अपने झुमके पहनने लगती है। वहीं दिशा रूही की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, अगर मैंने शादी कर ली तो तू कैसे रहेगी? दिशा की बात सुनकर रूही मुस्कुराते हुए बोली, तब दी, मैं आपके पीछे पीछे आपके ससुराल आ जाऊंगी। फिर जीजू का अगर कोई भाई होगा तो मैं उसी से शादी कर आपके साथ रहूंगी। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। रूही की बात सुनकर दिशा तौलिया अपने सही जगह पर रखते हुए बोली, चल पगली, अब तेरी मीठी मीठी बातें हो गई हों तो चलें। दिशा की बात सुनकर रूही सर हाँ में हिला देती है और अपना बैग उठा जैसे ही जाने को होती है, वैसे ही रूही का फोन बजता है। जिसे देख रूही फोन निकाल देखती है तो परी का फोन था। जिसे देख रूही फोन रिसीव कर लेती है। कॉल रिसीव होते ही उधर से परी की आवाज आती थी, जो उसे शॉपिंग पर जाने के लिए बोल रही थी। परी की बात सुनकर रूही को कल का रुद्र का बिहेवियर याद आ जाता है, जिसे याद करके ही उसके मन में डर बैठ जाता है, जिसकी रूही परी को तुरंत मना करते हुए बोली, परी, इस बार तू अकेले ही चली जा। वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मेरा मन भी नहीं है जाने का। रूही की बात सुनकर परी तुरंत रूही की चिंता करके हुए बोली, नहीं, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतनी भी बीमार नहीं हूं, बस तू शॉपिंग पर आज अकेले ही चली जा। रूही की बात सुनकर परी उदास होते हुए बोली, चल ठीक है, पर तू अपना ध्यान रखना। परी की बात सुनकर रूही हाँ बोल कॉल कट कर देती है। फिर दिशा की तरफ देखते हुए बोली, दी, चले? रूही की बात सुनकर दिशा उसके पास आते हुए बोली, रूही, तूने झूठ क्यों बोला? कहीं दीवान सर के भाई की वजह से तो नहीं? दिशा की बात सुनकर रूही कुछ भी नहीं बोलती। जिसे देख दिशा समझ जाती है कि यही बात है, जिसके बाद दिशा भी कुछ नहीं बोलती और रूही के साथ उसके कॉलेज के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि उसे रूही को इन सब चीज़ों से निकलने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। कुछ देर में दिशा रूही को कॉलेज छोड़ खुद ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के ऑफिस में, रुद्र की कार जैसे ही उसके ऑफिस के अंदर एंटर करती है, वैसे ही एक एम्प्लॉय जल्दी से भागते हुए ऑफिस के अंदर आता है और सभी को देखता है, जो एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे। उन्हें देख वे एम्प्लॉय चिल्लाते हुए कहता है, अरे, आज रुद्र सर ऑफिस आए हैं, जल्दी से शांति से बैठ जाओ वरना तुम सबकी जॉब जाएगी। उस एम्प्लॉय की बात सुनकर सबके कान खड़े हो जाते हैं और वे सब जल्दी जल्दी अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बॉस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि उनके बॉस छोटी सी गलती पर भी जॉब के निकाल देते हैं। यहाँ तक कि किसी को जान के मारने के पहले भी एक बार नहीं सोचते, इसलिए कोई भी इस ऑफिस से निकलने का रिस्क नहीं ले सकता था। इसलिए वे सब एक बेस्ट एम्प्लॉय की तरह बैठ अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं लड़कियां तो इस बात से ही खुश हो जाती हैं कि फाइनली आज वे अपने हैंडसम बॉस रोती सिंघानिया से मिलेंगी, जिसे सिर्फ देखने के लिए ही लड़कियां मरती हैं। लेकिन वे उन खुशनसीब लड़कियों में से हैं जो आज रुद्र सिंघानिया को देख पाएंगी। इसलिए वे सब अपने पर्स से जल्दी जल्दी मेकअप का सामान निकाल अपनी लिपस्टिक और मेकअप को सही करने लगती है। वहीं रुद्र कार से निकल अपने गोल्ड ऑरा के साथ ऑफिस में एंटर करता है, जिसे देख सभी शांति से अपना काम करने लगते हैं। वहीं लड़कियां काम करने के साथ साथ अपनी चोर नजरों से रुद्र के हैंडसम फेस को भी देख रही थी। वहीं रुद्र के पीछे पीछे अमन भी आता है और उन लड़कियों को ऐसा करता हुआ देख अपने मन में कहता है, ये बेवकूफ लड़कियां क्यों इस शैतान को जगाने पर लगी रहती हैं? लगता है इन्हें अपनी जान और जॉब दोनों प्यारी नहीं है जो इस शैतान बॉस को देख रही हैं। अगर गलती से भी इस शैतान की नज़र इन पर पड़ गई ना तो ये शैतान इन्हें अभी खा जाएगा। इतना बोल वे रुद्र के पीछे पीछे चला जाता है। वहीं रुद्र बिना किसी पर ध्यान दिए अपने पर्सनल लिफ्ट में घुस अपने कैबिन की ओर चला जाता है। उसी के पीछे अमन भी चला जाता है। वहीं रुद्र के जाते ही वे लड़कियां आहें भरते हुए कहती हैं, अरे यार, ये रुद्र सर कितना हैंडसम है, खास मैं इनके साथ कुछ समय बिता पाती। उस लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की भी आहें भरते हुए बोली, हाँ यार, सच में रुद्र सर फोटो के भी कहीं ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग है, खास मैं इनके साथ वन नाइट स्टैंड कर पाती। पता नहीं कौन बेखुश नसीब लड़की होगी जिसके रुद्र सर शादी करेंगे। इसी तरह वे लड़कियां एक के बाद एक रुद्र पर अपने अपने कॉमेंट पास करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के कैबिन में, रुद्र अपने कैबिन में आ अपने किंग साइड चेयर पर आराम से बैठ जाता है। वहीं अमन रुद्र को देखकर बोला, बॉस, आपकी 5 मिनट में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अमन की बात सुनकर रुद्र अपने लैपटॉप में कुछ देर काम करता है, फिर अमन के साथ मीटिंग रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिशा के ऑफिस में, दिशा अपने घड़ी में टाइम देखते हुए जल्दी से अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाती है। फिर अपने तेज कदमों से जल्दी जल्दी देवांश के कैबिन की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक मिनट देर हो गई थी, जिसे देख वे अपने लंबे कदमों के साथ चलते हुए अपने मन में ही कहती है, हे माता रानी, इस बार बचा लीजिए, सर अब इसके लिए कोई सजा न दे दे, सिर्फ एक मिनट ही तो देर हुई हूँ। इतना बोल वे देवांश के पर्सनल लिफ्ट में जा देवांश के कैबिन की ओर चली जाती है। देवांश का पर्सनल लिफ्ट सिर्फ दिशा ही यूज कर सकती थी, यहाँ तक कि देवांश अपने असिस्टेंट को भी अपने पर्सनल लिफ्ट से आने की परमिशन नहीं देता। दिशा देवांश के कैबिन के पास पहुंचती है और जैसे ही दरवाजा नॉक कर अंदर आने के लिए परमिशन मांगती है, वैसे ही देवांश की कोल्ड आवाज उसके कानों में पड़ती है, कमिंग।
जिसे सुन दिशा अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही देवांश की खतरनाक नजरें खुद पर महसूस करती है, वैसे ही वो डर के मारे अपना थूक अपने गले के नीचे खटक लेती है।